नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तालु याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पूर्ण मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिवांशु पांडे ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास विस्फोट में 24 लोग मारे गए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी के महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान है। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि आधिकारिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण है और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहे। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रही है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती है। दोनों नेताओं ने खारी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो ने भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने ये बात नई दिल्ली में अमरीकी के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री कल 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश का नाम बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दूध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दूध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्सियोंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। कार्सियोंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना दिया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी के 90 वर्षों की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1994 36 को स्थापित आकाशवाणी कार्शियोंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान कटा है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नासिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट में से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी की मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। धमाके के बाद एहतियाती के तौर पर पेशावर जाने वाली जफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को भी अभी भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शाओशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शु फिहोंग ने शाओशी प्रांत में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंट टो को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवनी पेट्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही एलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्ज आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के जानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए हैं। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसीजन मेडिसिन और विविकरण से संबंधित निर्णय लिए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।